नारायण 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 नारायण। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम् शाप्ते परे च निष्णातम् ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुर्वात्मदैवतः अमायानुवृत्त्या यैस्तुष्येदात्मतो हरि। जीव का कल्याण कैसे हो, ये राजा जनक ने नवयुग भूषण से संभाषण प्रश्न किया है। और फिर उन्होंने वर्णन किया भागवत धर्मों का, भागवत भक्तों का, भगवत भक्तों का, माया का और उससे निवृत्ति के उपाय का। तो आशय क्या है कि माया से निवृत्त होकर के कल्याण के मार्ग की जिज्ञासा करो। जिज्ञासा उत्पन्न ही तब होगी जब माया से निवृत्त होने का उपाय करेंगे। आप सब लोग जानते हो, केवल स्मरण करा रहे हैं, माया छूट जाएगी इस भ्रांति में कभी मत रहना, कभी नहीं छूटेगी। माया तो रहेगी ही रहेगी। अगर माया रहेगी तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दोष भी रहेंगे, ये कोई छूटने वाले नहीं है। इस भ्रांति में कभी मत आ जाना, एक समय आएगा जब हम काम से मुक्त हो जाएंगे, हम क्रोध से मुक्त हो जाएंगे, इस भ्रांति में नहीं रहना चाहिए। मैं इसलिए आप लोगों को आग्रह पूर्वक कह रहा हूं कि कई लोग इनके निवारण के प्रयास में लग जाते हैं और उसमें समय और श्रम दोनों ही लगते हैं, लेकिन उनसे मुक्ति होती होती नहीं है। रामकृष्ण परमहंस देव जी की पत्नी शारदा माता ठाकुर के भक्त माने रामकृष्ण परमहंस देव जी के भक्त, उनको माता का साक्षात अवतार मानते हैं और उसी तरह उनकी पूजा करते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी ने भी उनका षोडशी के रूप में पूजन किया था, भगवती के रूप में इतिहास है। तो स्वामी जी के, माने स्वामी विवेकानंद जी के चले जाने के बाद, माने शरीर से, ठाकुर के चले जाने के बाद, माने रामकृष्ण परमहंस देव जी के शरीर चले जाने के बाद, माता जी बहुत काल तक रही हैं। हमने उनके साक्षात शिष्यों के दर्शन किए हैं जिनको उनसे दीक्षा मिली, इतना रीसेंट है समझ लो। तो वृद्धावस्था में वो एक दिन धूप सेंक रही थी, उनके बगल में उनसे भी एक अधिक बूढ़ी माता बैठी थी। एकांत था इसलिए बूढ़ी माता ने पूछा, मां एक काम की कोखनो समाप्त हो बे ना की। बंगला में मां ने हमको ये घटना, रामकृष्ण मिशन में जब हम भर्ती थे तो वहां के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे स्वामी जी, उन्होंने हमको सुनाई थी ये। 50 वर्ष से तो लगभग अधिक समय हो गया होगा, उतना तो हुई 50 वर्ष तो हो ही गया, चलो हाफ सेंचुरी तो मैच्योर है। उन्होंने हमको सुनाई थी बात और हम बहुत देर तक समाधि में जैसे लग गए थे, ये हमको उन्होंने सुनाया था। तो प्रश्न किया उस बूढ़ी शरीर वाली माता ने, अंगम गलितम वाला जो श्लोक भगवान शंकराचार्य कहते हैं वही, क्या ये काम कभी समाप्त नहीं होगा क्या? तो माता जी है, माता की वाणी तो अलग होती है। बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, ओ गो मां, ऐ शरीर काम थे कि उत्पन्न होए चे, शरीर संगे ही जावे। ये शरीर काम से उत्पन्न हुआ है। स्वामी जी, मुझे स्वामी अखंडा जी महाराज कहते थे कि तुम्हारे माता पिता के हृदय में जब काम जागृत हुआ है तब तुम्हारा मूल हुआ है, उत्पत्ति हुई है। तो शरीर के मूल में ही काम है माय डियर, कहां से नष्ट कर दोगे? मां ने कहा जब ये शरीर नष्ट होगा तब काम नष्ट होगा, उसके पहले काम नष्ट वष्ट होने वाला नहीं है। अरे माता पिता के मन में काम आया ये तो बहुत लेटर, बहुत पीछे की बात है। भगवान को भी जब सृष्टि करनी हुई तो उन्होंने काम का आश्रय लिया। सो अकामयत एको हम बहुश्याम प्रजाए। जब बहुत्व की इच्छा हुई, अपने को बढ़ाने की इच्छा हुई, तो भगवान ने भी काम का आश्रय लिया है। सौ अकामयत, उसके मन में भी काम जागृत हुआ। हाँ, जागृत हुआ ठीक है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। काम जागृत हुआ कहो तो ठीक है। थोड़ा हम अटक गए यहां पर इसलिए कि जो पक्के वेदांती होंगे वो प्रश्न करेंगे, जागृत हुआ माने क्या? ये माने द्वैत वाली बात आई जा रही है या नहीं? तो ऐसा नहीं है, भगवान स्वयं काम स्वरूप भी हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने काम रूप का स्मरण कर लिया। जैसे किसी किसी के माता पिता या पिता गजेटेड ऑफिसर हैं तो पिता की तरह उनसे व्यवहार करता है बच्चे से, लेकिन अगर कभी उसका पेपर अटेस्ट करना हुआ तो वो अपने में गजेटेड ऑफिसरत्व आधान करके तब साइन कर देता है। तो जो जिस प्रकार कभी हम गुरु बन करके अपने में गुरुत्व का आधान करते हैं, कभी मित्रत्व का आधान करते हैं, कभी शिष्यत्व का आधान करते हैं इत्यादि, तो ये केवल जो क्रिया करनी है उस तरह का संकल्प। अरे संकल्प वंकल्प, अब इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, शब्द के प्रयोग के लिए उपाय नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं संकल्प इत्यादि। तो भगवान का संकल्प हुआ सृष्टि करने का, तो जब उनकी मन में सृष्टि करने का संकल्प हुआ तो उन्होंने अपने काम रूप का स्मरण किया। मैंने विस्मरण हो गया तो इसलिए स्मरण किया, ऐसा नहीं है। फिर मैंने कहा शब्द की सीमा है, इसलिए कह रहा हूं वो काम रूप में अपने को प्रकट किया, क्या वो काम रूप हो गए। चलो ठीक, तो सृष्टि के मूल में काम है माय डियर, कहां से काम नष्ट कर दोगे? सोने का आभूषण कहे कि मैं अब सोने से, सोना बहुत खराब चीज है, आभूषण कहे मैं सोने को मिटा दूंगा, तो सोने को मिटाओगे माय डियर तो तुम्हारा आभूषणत्व भी नष्ट हो जाएगा। मैं इसलिए आप लोगों को स्मरण करा रहा हूं, ये काम वाम नष्ट करने की फालतू चेष्टा में मत पड़ो, पड़ा रहे दशहरे के कोने में और क्या लेना देना है। काम जानामि ते मूलम संकल्पात खलु जायते, काम पड़ा रहे हमारा क्या बिगाड़ रहा है, हम जब संकल्प करेंगे तब काम प्रभावशाली होता है, हम संकल्प नहीं करेंगे काम कोई प्रभावशाली होएगा ही नहीं। बांग्लादेश के युद्ध के समय आप लोगों में से बहुत लोग यंग रहे होंगे और कमेंट्री आती थी तो आप लोगों ने सबने श्रवण किया होगा, बांग्लादेश का युद्ध कैसे जीता गया था। उस समय जनरल मानेकशॉ आर्मी के चीफ थे और उन्होंने वो स्ट्रेटजी अपनाई थी कि अद्भुत, शायद उसके पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुई और शायद इसके पहले तक और उसके बाद भी इतनी बड़ी आर्मी ने कहीं सरेंडर किया हो वो भी सुनने में नहीं आया। इतनी बड़ी आर्मी ने सरेंडर किया था, उसके पास असला था, 6 महीने लड़ सकती थी लेकिन सरेंडर करवाया। जैसे मानेकशॉ ने युद्ध में विजय प्राप्त की वैसे हम लोगों को करना चाहिए। मानेकशॉ ने जब ढाका पहुंचना था, एक लिमिट थी, अगर उसके पहले पहले अगर ढाका नहीं पहुंच पाए, अब अंतर की और बहुत बातें हम नहीं बताना चाहेंगे, पता नहीं अब वो रेस्ट्रिक्टेड हैं कि नहीं है, तो उनको कहे अगर इस समय तो तुमने ढाका फतेह नहीं किया तो तुम फिर तुम कर नहीं पाओगे, तुमको सीज फायर हो जाएगा, जल्दी जल्दी पहुंचना है और उतनी बड़ी सेना अपने घर में बैठी है। तो मानेकशॉ ने युक्ति भिड़ाई कि जहां जहां कैंट थे, कैंट माने जहां जहां उनकी आर्मी लगी थी उधर वो गए ही नहीं, बाईपास कर गए, ज्यादातर कैंट को कब्जा करने कोशिश गए, वो यूं निकल गए, यूं निकल गए, यूं निकल गए, यूं निकल गए और कैंट को घेर दिया, बस लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी और सीधे स्पीड से चलते, क्या लड़ते तो समय लगता, सीधे 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 वहां ढाका के पास पहुंच करके और वो साइकोलॉजिकल वारफेयर, अब हम यहां पहुंच गए हैं, अब हम यहां पहुंच गए, तीनों हो गए, अब आप लोग सरेंडर कर दीजिए वरना ये होता है, ऐसा साइकोलॉजिकल वारफेयर किया। वो जनरल नियाजी था, लेफ्टिनेंट जनरल था, आर्मी चीफ उसको बनना चाहिए था, नहीं बन पाया, खैर सरेंडर करवा दिया, पहुंच गए वहां तक। क्या युक्ति की, जहां युद्ध होने वाला है वहां अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करो। तो इस दृष्टि से इनको नष्ट वष्ट करने की कोशिश मत करो, कहीं नष्ट वष्ट होते होते नहीं, हम आपको ईमानदारी से बताए देते हैं, थोड़ा सा वही अपने को सुरक्षित रखने की कोशिश करो कि संकल्प न आए, अवसर न आए, बस अवसर से बचने की चेष्टा करें, संकल्प से बचने की चेष्टा करें, बाईपास करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले। कहां रास्ते में तो पता नहीं कितने कुत्ते मिलते हैं, आप तो कार में बैठते हो, आपको क्या बताओ, हमसे पूछो, जब पैदल पैदल गांव गांव में घूमे नंगे पर, बड़े प्रेम तो उनको कोई लेना देना नहीं, ये नया जीव कहां से आ गया, कौन सा पशु है ये, हमने तो देखा नहीं इतने पशु, वो भूखते और एक एक कुत्ते से लड़ते फिरते डंडा मारते रहेंगे तो कभी पहुंचेंगे, वो अपना भूखते रहते, अब उसको चुपचाप लगा दो निकल गए। कितने कुत्तों से लड़ोगे, कितने कुत्तों से होकर छोड़ो, अपने लक्ष्य को ध्यान दो। तो माता कहती है ये शरीर काम से उत्पन्न हुआ है, शरीर नष्ट होने पे ही काम नष्ट होगा, भजन करो। कि हम भूल गए रामकृष्ण परमहंस देव जी की पत्नी का स्मरण और ये काम की चेष्टा कहां से आ गई बीच में, बताओ, हम तो भूल गए, ये कहां से डायवर्शन हुआ। याद करके बताओ, जैसे हमको ध्यान आ गए, देखो कितने ध्यान से सुन रहे हो आप लोग, माया तो नाटक चल ही रहा है, सॉरी हाँ वो तो ठीक ही है, मतलब प्रश्न ही है, ये कहां से आ गया? सोचो। हाँ तो मैंने वो कहां से आ गए बीच में कथा में माया? हाँ तो ये बात कहने के लिए काम नष्ट नहीं होता है, ये बताने के लिए कथा सुनाई थी, ये काम नष्ट करने वाली बात कहां से आ गई थी? नहीं ये तो हुआ, ये तो यही बताने के लिए हमने वो उनकी घटना सुनाई कि काम नष्ट वष्ट नहीं होता है, उसकी फालतू की चेष्टा में मत पड़ो, तब तो हमने वो कथा सुनाई। ये काम नष्ट करने वाला कहां से प्रसंग आ गया था वो बताओ। हाँ हाँ ठीक है, माया क्या बात हुई थी जब वो आ गया? ये माया से ये काम की तरफ हम कहां से घूम गए? ध्यान करने वाली बात है, ये जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब रहेंगे, इनमें से कोई नष्ट होने वाला नहीं है। वी हैव टू लर्न हाउ टू लिव विथ देम। हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं? व्यर्थ में उनके साथ युद्ध करने की चेष्टा न करें। अब यहां तक हमने बताया, अब बताओ कहां से मूल था? अब तो इतने नजदीक तक पहुंचा दिए, ईश्वर के मन में संकल्प हुआ काम, ये तो शरीर हमारे शरीर में काम हुआ, आपके शरीर में काम हुआ, माता पिता कान ईश्वर के मूल में हुआ, ये सबके सब पीछे के हैं। अब इतने इशारे के बाद तो कुछ कुछ याद आ जाना चाहिए। याद करा दो हमको भाई, ने कैसे आगे गाड़ी चले। जब भी एक के बाद एक स्त्री अगर सीढ़ियां नहीं बनाओगे, एक के ऊपर एक ईंट नहीं रखोगे तो भवन बनेगा नहीं, एक भी ईंट सरक गई तो भवन कमजोर हो जाता है। जी जी, कि एक को हम बहुत श्याम प्रजाए, माने काम की संकल्पना की, ये तो बात है। तो ये कहां से आ गया था? काफी नजदीक पहुंच रहे हो, पहुंच रहे हो जी, बोले है? वो खिलाड़ी है जी, बिल्कुल बड़ा खिलाड़ी है जी, बिल्कुल लगा जोर, काफी नजदीक तक पहुंच गए। हमको माय डियर अपने श्रेय का उपाय जानना है। श्री राजा नीमे ने नवयोगीशों से जिज्ञासा की कि हम श्रेय की प्राप्ति कैसे करें, और तब उन्होंने भागवत धर्मों का, भागवत का माया से तरने का उपाय बताया। अब किस तरह से माया से तरा जाए, क्योंकि माया के साथ आपको रहना होगा, माया छूटती नहीं है। ये बात आई थी कि माया तो रहेगी ही, यहां से फिर माया के मूल में काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि की चर्चा शुरू हुई थी, मूल काम है, इसलिए हमने उन्हें काम के ऊपर चेष्टा शुरू की। तात्पर्य है कि माया से छूटने का उपाय मत करो, माया से बचने का उपाय करो। जब तक माय डियर शरीर रहेगा तब तक शरीर को भोजन चाहिए, अगर विवेक है तो कम से कम लज्जा ढकने के लिए इतना बड़ा कपड़ा तो चाहिए ही चाहिए। तो जब तक एक रोटी एक लंगोटी की भी जरूरत है माय डियर, तब तक तो माया का आश्रय लेना ही पड़ेगा। इसलिए मायाम एताम तरंतिते, इसका आशय ये समझ लो हम उसमें चिपके नहीं। जहां से बात शुरू हुई थी अगर स्मरण आपको आ जाए कि माया के बिना शरीर का धारण रखना संभव नहीं है, इसलिए कभी माया तुम्हारी सर्वथा, अरे हमारी नहीं छूटी तो अब हम और कोई छोड़ देगा हम कैसे मान लें, तो रहेगी। लेकिन वही बात है कि बाईपास करना है। मानिक शाह ने जैसे किया था कि उनसे युद्ध मत करो, काम से युद्ध मत करो, क्रोध से युद्ध मत करो। थोड़ा प्रसंगांतर हो रहा है लेकिन आप लोगों को हम स्मरण करा देते केवल जानकारी के लिए, क्योंकि प्रायः इस तरह की चर्चा इन मंचों में लगभग नहीं होती है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई प्रकार से चेष्टाएं सबने की हैं। प्रारंभ से भारतवर्ष में दो मार्ग रहे हैं, एक वैदिक मार्ग और एक आगमिक मार्ग। हम लोग सब वैदिक मार्ग वाले हैं और प्रारंभ से ही एक मार्ग चल रहा था, उसको आगमिक मार्ग कहते हैं, उसको तंत्र मार्ग भी कहते हैं। तो वेद की दृष्टि एक अलग प्रकार की रही है और आगम की या तंत्र की दृष्टि एक अलग प्रकार की रही है। वेद ने निषेध मुख अपनाया, नेति 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 यही वेद कह, और आगम ने उन सबको स्वीकार किया है। आगम में भी ये केवल आपको आज संस्कार डाले दे रहे हैं, केवल कभी कोई चर्चा चले तो आप लोग प्रेमपुरी के सत्संगी हो, आप लोगों को मालूम है, केवल इस दृष्टि से कह रहा हूं। इस मार्ग पे आप आगे बढ़ेंगे या वो हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन एक संस्कार तो मालूम हो कि केवल एक बोले हमको मालूम है, हम हमारा रास्ता ये है लेकिन हमको मालूम है। तो आगम मार्ग में सबका स्वीकार है, निषेध नहीं है। आगम मार्ग में भी जिनको तंत्र मार्ग भी कहते हैं, तनु विस्तारे से बना है, तंत्र शब्द के भी बहुत से अर्थ हैं। प्रायः करके लोगों ने तंत्र माने कुछ इस प्रकार की क्रिया वाली उपासना मान ली है, ऐसा नहीं है। तंत्र मार्ग भी बड़ा प्रशस्त मार्ग है, बड़े दिव्य दिव्य उनके दर्शन हैं और बड़े बड़े दिव्य सिद्ध इनमें हुए हैं। ये गोरखनाथ जी या इनके पहले वो सबके सब इस मार्ग के, मच्छेन्द्रनाथ जी, गोरखनाथ जी गुरु जी, और प्रायः अच्छा चलो वो इतिहास आप क्या करोगे जान के। तो तंत्र मार्ग में भी जिसको आगम मार्ग से तंत्र मार्ग कहा, तंत्र की अपनी व्याख्या है संप्रदाय के अनुसार, तो उसमें भी तंत्र शाक्त तंत्र अलग है, शैव तंत्र अलग है और अगर जानना चाहते हो तो गणपत तंत्र अलग है, सौर तंत्र अलग है। तो वैष्णव तंत्र भी है। आप लोगों को कुछ कुछ नाम मालूम होंगे, यामल कहलाते हैं वो ग्रंथ, पांचरात्र कहलाते हैं, ये गोपाल सहस्रनाम इत्यादि का जो पाठ करते हो वो पांचरात्रों से है, नारद पांचरात्र का है। तो खैर ये इस प्रकार से इनमें भी कुछ वाम तंत्र है, कुछ दक्षिण तंत्र है। दक्षिण तंत्र और वाम तंत्र में भी परस्पर भेद है। एक में क्रिया और वो ज्यादा प्रधान है, ज्यादातर लोग उन्हीं को समझ करके और उस तरह से उसको निंदित करते हैं। निंदा की स्थिति नहीं है, बड़ा भारी संयम का मार्ग है, बहुत संयम का मार्ग है। जिन चीजों का प्रयोग करने के लिए बताया गया है वो इस स्टेज के ऊपर पहुंचने के बाद है। अब सोच लो कितना कठिन होगा, स्त्री संग करना है लेकिन अगर काम उत्पन्न हुआ तो नरक में जाओगे। मजाक है, स्त्री संग करो काम नहीं उत्पन्न हो। इस स्थिति के पहले अगर करते हैं तो पतन की बात है। तो इसलिए उसके लिए कोई अन्यथा दृष्टि नहीं लानी चाहिए। तो वाम तंत्र भी है और दक्षिण तंत्र भी, फिर उसमें भी अलग अलग काली तंत्र अलग है, सरस्वती तंत्र अलग है, सब पीछे कुछ काल बाद ये जब भक्ति मार्ग का उदय हुआ दक्षिण में तमिल प्रदेश में, उस समय वैदिक और तांत्रिक ये दोनों उपासनाएं जुड़ गई हैं। अब तिरुपति और रंग जहां भगवान अनंत शयन जहां भगवान है, हैं रंगनाथ, हाँ उस जगह का नाम क्या है? नहीं गुरु नहीं वही रंगनाथ, वहां पे कावेरी के बीच में टापू है जहां और जगह शहर में मंदिर होता है, वहां मंदिर में शहर है वो। आप सब लोग हैं शायद उसको वही कहते हैं, जो भी है तिरुपति की बता देते। चलो आपको तिरुपति की उपासना बता दें तो तिरुपति की उपासना में तंत्र है। उस उपासना को एकदम अभी हम वही बताने के लिए तो मोहतक क्या अभी भूल गए, आप लोगों को याद, आप लोगों की सहायता भी क्योंकि हमें को मालूम है क्या करें। वहां के जो अर्चक हैं उनके निवास के ऊपर वही लिखा हुआ है, उनका निवास। तो ये दो प्रकार की वैष्णव की उपासना की पद्धतियां हैं, एक में श्रीरंगम में उपासना होती है और एक की श्री तिरुपति में उपासना। अब याद आ गया प्रवचन में तो कह, तो हम ये बात इसलिए कहे थे कि तंत्र वाले इनसे लड़ने की कोशिश नहीं करते, वो इसके साथ मित्रता कर लेते हैं, ये मतलब है। हमारा तात्पर्य केवल इतना समझाने में था और हमारे भक्ति मार्ग वालों ने भी काम को भगवान का रूप मान लिया या भगवान का पुत्र मान लिया। ये कामदेव को शंकर जी ने जब श्राप दिया था, श्राप अरे जला दिया था, और जब काम की पत्नी रति आई थी प्रार्थना करने के लिए, अब मैं क्या करूंगी, तुमने इनको कर दिया तो उनका अच्छी बात है, जाओ जब कृष्ण का अवतार होगा तो उनका पुत्र तुम्हारा पति होएगा, उज्जीवित हो जाएगा। तो ये एक कहानी नहीं समझो, कितनी बड़ी बात है। काम जो है वो अब गर्भित नहीं रहा, क्यों? कृष्ण का पुत्र है। कृष्ण का पुत्र हो गया तो गर्भित नहीं रहा, हमारे स्वामी का पुत्र है। तो अगर मालिक मानते हो तो हमारा भाई हो गया, अगर हमारे पिता हैं कृष्ण तो हमारा भाई हो गया। अब मित्र की तरह भाई गड़बड़ थोड़ा करेगा। तो किसी, अब इसको विवेक से सोचो, उसको एक्सेप्ट करना कर दिया गया। तो हम अपने फिर वही प्रसंग में मूल में आ जाए घुमा फिरा करके कि इनसे लड़ने की चेष्टा नहीं करो। लड़ोगे शक्ति नष्ट होगी, समय नष्ट होगा। कैसे हम लक्ष्य की प्राप्ति करें? तो तस्मात गुरु प्रपद्येत, इसलिए गुरु की प्रपत्ति करें। कौन करे? जिज्ञासु। जिसको पार होने की इच्छा है वो गुरु के पास जाए, जिसको पार वार नहीं करना है तो उसको गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बता दिया, जो जिज्ञासु होए, जिसको उत्तम श्रेय का जिज्ञासु है कि उत्तम श्रेय कैसे प्राप्त होगा, वो गुरु के पास प्रपत्ति करे, उनके पास जाए। कैसे गुरु के पास जाए? तो उसके लिए विशेषण दिया है, शाब्दे ब्रह्मणि और परे ब्रह्मणि निष्णातम। श्लोक है, शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि, ब्रह्मणि निष्णातम, जो ब्रह्म में निष्णात हो, ब्रह्म विद्या में निष्णात हो, ब्राह्मी उपासना में निष्णात हो। ब्राह्मी उपासना दो तरह, एक शाब्द की उपासना है और एक पर उपासना है। इसको ऐसे समझ लेना चाहिए, एक थ्योरेटिकल है और एक प्रैक्टिकल है। ताजमहल के बारे में बड़ी सुंदर सुंदर किताबें लिखी हुई हैं, उसमें हर चीज वेरी डिटेल्ड लिखी हुई है। उसका पत्थर कहां से आया था, उसका इंजीनियर कौन था, उसका आर्किटेक्ट कौन था, उसके पत्थर कहां से आए थे, किस तरह से आए थे, उसकी मिनरेट की ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊपर जो कलश लगा हुआ है वो कितना ऊंचा है। देखने में इतना छोटा, इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा तो है ही कम से कम, 18 बोरी चने उसमें आते हैं, ये नाप बता देता हूं। तो हर चीज वेरी डिटेल्ड लिखी हुई है किताबों, शेड तक लिखी हुई है, डिजाइनें कैसी कैसी बनी, सब का वर्णन है। अगर कोई ताजमहल के बारे में पूछे तो जिसने वो किताब पढ़ रखी है वो ताजमहल के बारे में हर चीज बता देगा। तो जिसको ताजमहल के बारे में जानना हो, वो किताब जिसने पढ़ रखी उसके पास जाके पूछ लो। लेकिन अभी उसको बेचारे को ताजमहल जाने का चांस नहीं मिला है, तो अब अगर उससे किसी ने वो प्रश्न कर दिया जो किताब में नहीं है या उसने नहीं पढ़ा है, तो वो समाधान नहीं कर पाएगा। ये जितने भी शास्त्र हैं ये सब के सब उसी तरह पुस्तक के रूप में, इसलिए शास्त्र पढ़कर के जो ब्रह्म ज्ञान होता है, ताजमहल का ज्ञान होता है, हापुस आम का ज्ञान होता है, उसमें कौन कौन सा एसिड होता है, वो कौन कितने में स्टार्च होती है, कितना उसमें शुगर होती है, उसके छिलके में क्या होता है, ऊपर सब पूरा पढ़ लिया हापुस के बारे में, लेकिन अभी हापुस कभी टेस्ट नहीं किया है। तो परब्रह्म के बारे में शास्त्र से जो जानना कहलाता है उसे भी ज्ञान कहते हैं, लेकिन उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। परोक्ष माने अक्ष माने इंद्रियां, और इंद्रियों में मन भी ले लो, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। तो पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां और छठा मन, ये तो आपने उसके बारे में जान तो लिया है लेकिन आंख से देखा नहीं, उसको अन्य प्रकार से प्रत्यक्ष नहीं किया है, प्रत्यक्ष का मतलब ही होता है प्रति अक्षम, अक्ष माने इंद्री, इंद्रियों का विषय जब तक नहीं बनाया है तब तक पता नहीं चलता है। तो वो जो ज्ञान है शास्त्र का उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और जब उस श्रमण के बाद मनन और निधिध्यासन के द्वारा अपनी अनुभूति का विषय बना लिया, थोड़ा हापुष टेस्ट कर लिया और ताजमहल को देख लिया, तो ये जो है ये अपरोक्ष ज्ञान कहला। इसी को वेदांत की भाषा में अपरोक्षानुभूति कहते हैं। अपरोक्षानुभूति करके ग्रंथ भी है। अपरोक्षानुभूति माने साक्षात अनुभव किया हुआ। तो लिखा है शाब्दे परे चनिष्णातम, गुरु कैसा हो जो शाब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में दोनों में निष्णात हो। ये कैसा होती है, ये दोनों क्यों होना चाहिए। ताजमहल के बारे में पूरा डिटेल बता देगा वो, जितना डिटेल आपको चाहिए। लेकिन जिसने ताजमहल के बारे में केवल पढ़ा है, अनुभव नहीं किया है, उसकी वाणी में वो सामर्थ्य नहीं होगा जो शिष्य की जिज्ञासाओं का समन कर सके। तो ठीक है, शास्त्र छोड़ो, ऐसे महापुरुष की शरण में जाओ जिसने अनुभव कर रखा हो, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, उससे काम चल जाएगा। तो ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, अपरोक्षानुभूति कर ली है, ठीक, अपना कल्याण तो वो कर लेगा, लेकिन दूसरे की शंकाओं का समाधान बिना शास्त्र का आश्रय लिए नहीं हो सकता है। वो आत्म कल्याण कर लेगा लेकिन दूसरों का हित नहीं कर सकता है। युक्ति है, जैसे अपने मारने के लिए इतना बड़ा ब्लेड का टुकड़ा बहुत हो गया का, लेकिन बांग्लादेश का युद्ध करने के लिए इससे काम चलेगा, इससे काम चलेगा, इससे काम चलेगा, अरे न जाने क्या क्या चाहिए। तो जो जितना बड़ा जिज्ञासु है, बुद्धिमान है, उसके लिए गुरु को ही उतना ही अधिक प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रिपेयर होना पड़ता है। हमारे पूरी कथा क्या सुना है, जितना हमारे एक कहावत है, जब विद्यार्थी पढ़ता है तब अपने गुरु को पढ़ाता है, और जब वो विद्यार्थियों को पढ़ाने लगता है तब वो पढ़ना शुरू करता है एकदम से। जितना शार्प स्टूडेंट, हमारा प्रोफेसर अशोक बैठा हुआ है यहां पे बता देगा क्यों माय डियर, पढ़ते समय तुम ज्यादा पढ़े हो, पढ़ाते समय ज्यादा पढ़े हो, पढ़ाते समय, पढ़ते समय तो जितना जरूर तो पढ़ लिया, पढ़ाते समय हमारे प्रोफेसर बताते हैं, कोई घटना घटी थी, माने एक बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और वहां के इम्प्लॉयज ने कहा कि ये हम लोग तो सवेरे 9:30 बजे जो भी टाइम है 9 से 10, 9 या 9:30 से 5 तक काम करते हैं, और प्रोफेसर लोग 12-1 बजे आते हैं और 2:30-3 बजे चल देते हैं, वो भी इम्प्लॉय है, हम में उनमें क्या अंतर है, उनको भी पूरा टाइम देना चाहिए। ये आ गया वाइस चांसलर आकर के डिपार्टमेंट में, फिलोसफी डिपार्टमेंट में आके ये बात करते। तो हमारे प्रोफेसर ने एक उदाहरण दिया कि मिस्टर वाइस चांसलर, एक कपड़े की दुकान वाला होता है और एक चाट की दुकान वाला होता है। आप लोग कभी बनारस जाओ तो मैं एक दुकान बता देता हूं। बनारस में चौक में एक कोतवाली है, कोतवाली के पीछे एक चाट वाला बैठता है, वो शायद 2:30-3 बजे के लगभग दुकान खोलता है, और 5 बजे तक अगर आप लोग नहीं पहुंचे तो फिर माइसो मिलने बनाने कोई वही जरा सा कुछ कुछ ओले ओले मिल गया तो दे दिया तो सबका साफ। तो हमारे प्रोफेसर ने बताया कि कपड़े की दुकान चलाने वाला आता है, ताला खोलता है, बैठा झाड़ पोंछ करके और बैठा और रात को ताला बंद करके चला गया अकाउंट मिला के छुट्टी। लेकिन वो चाट वाला, उसके वही चाट वाले का लाभ लिया था, उसको ढाई घंटे तीन घंटे की चाट की दुकान कंटिन्यूस चलाने के लिए 18-20 घंटे 25 घंटे के परिश्रम करना पड़ता है। उसकी पत्नी भी लगी हुई है, बच्चे भी लगे हुए, मां भी लगी हुई, नौकर चाकर भी लगे, कोई छोले उबाल रहा है, कोई इमली उबाल रहा है, कोई पीस रहा है, कोई काट रहा है, कोई टुकड़े कर रहा है, कोई तल रहा है, इतने जने मिल करके तैयारी करते हैं और तब कहीं जा करके 2-2.5 घंटे तक वो मुश्किल से सप्लाई कर पाता है। इसके बाद जय श्री कृष्ण। तो उन्होंने कहा क्लर्क आता है, रजिस्टर खोलता है, काम किया, बंद करके चला गया और प्रोफेसर को 45 मिनट का लेक्चर लेने के लिए कम से कम 3 घंटे प्रिपरेशन करना पड़ता। 3 घंटे पढ़ाने का क्यों प्रिपरेशन करना पड़ता है? विद्यार्थी न जाने कौन सा प्रश्न कर बैठे, इसलिए उसको सॉलिड तैयार होकर के आना पड़ता है। तो इसलिए हमको मालूम हो गया कि मथुरा का, लेकिन अगर किसी का गाइड बनना है तो गाइड बनने के लिए प्रिपरेशन आवश्यक है, इसलिए शास्त्र भी आवश्यक है। शाब्दे परे च निष्णातम, अपने आप कल्याण कर लेगा जिसने शास्त्र का बहुत अध्ययन नहीं किया है, लेकिन दूसरे का अगर मार्गदर्शन करना है तो ही विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो इसलिए परे ब्रह्मण निष्णातम और शाब्दे ब्रह्मण निष्णातम, ये 2 विशेषण के साथ उपसमाश्यम माने कोई बहुत अधिक प्रपंच वाला भी नहीं। तो ये ऐसे शब्द में और परब्रह्म में उपसमाश्रय से रहित महापुरुष की शरण में जाए, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत, और क्या करे, तत्र भागवतान धर्मान सीखे, महाभागवत धर्मों की शिक्षा प्राप्त करे। श्री रमण बिहारी लाल की जय। हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
श्री रमण बिहारी लाल की जय।